गिरीवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान महाबलशाली श्री हनुमान गदाधारी श्री हनुमान गदाधारी श्री हनुमान संकट मोचन श्री हनुमान संकट मोचन श्री हनुमान राम को प्यारे श्री हनुमान सीता को प्यारे श्री हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पुकारो सब लोग पुकारो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इस उत्सव में स्वागत है। हनुमान जी का उत्सव, जन्मदिन का उत्सव मनाने का मौका मिलना ये बहुत परम भाग्य की बात है, क्योंकि हनुमान जी का भक्ति वेदांत अस्पताल में बहुत ही घना संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। जब ये अस्पताल नहीं था उसके कई साल के पहले से हनुमान जी का हमारा, मतलब उनकी हमारे पर कृपा है कि उनका घनिष्ठ संबंध प्राप्त हुआ है। संक्षेप में आपको बताना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग नए नए हर साल आते रहते हैं। 1990 में हम लोग सब डॉक्टर्स मिलके हनुमान जी के जन्म स्थान में गए थे। और वहां पर जाकर मेरे आंखों के सामने अभी भी वो दृश्य है। इसमें डॉक्टर दलाल बहुत जोर जोर से हृदय से रो रहे थे और हम भी रो रहे थे, और हनुमान जी को हम विनती कर रहे थे कि आपके भक्तों की और आपके श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में गरीबों की सेवा करने के लिए हमको एक वाहन चाहिए। आज आप लोग हंसेंगे कि 20 वाहन खड़े नीचे, 20, एक नहीं 20, मुझे भी पता नहीं 20 है कि 21 है कि 22 है। उस समय ट्रेन से जाते थे हम लोग कैंप करने के लिए, बहुत भीड़ वाले ट्रेन में, कभी परात लेकर, कभी कढ़ाई लेकर, कभी भगोना लेकर, कभी सब्जी लेकर, हर समय दवाई लेकर ट्रेन में घुसते थे। अच्छा लगता है सोचकर उसके बारे में, क्योंकि कभी भी अच्छे काम की शुरुआत बहुत नम्र अवस्था में होनी चाहिए, इट इज़ बेटर। हाँ, अगर कोई बहुत करोड़पति आदमी का बेटा अगर बिजनेस में आता है तो उसको ज़्यादा कीमत नहीं होती उसके, क्योंकि क्या है, सब करोड़ों का कारोबार रेडी है उसके लिए, उसको खाली आगे बढ़ाना है, उसको सब रेडी है, सब कुछ रेडी है। पिताजी का हॉस्पिटल है तो बच्चे का हॉस्पिटल डॉक्टर बन के तुरंत चालू करना है, सेट प्रैक्टिस है पूरी, उसके आगे चलना है, बस ज़्यादा कीमत नहीं होती उसकी। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ कुछ खड़ा करने के लिए, तो उसका बहुत ही मूल्य होता है और उस कभी भूलते नहीं है। अगर वो आदमी अब्जोपति बन गया ना, तभी वो भूलता नहीं है कि कौन से दिन से इस स्थिति में आ गए हैं। तो आज भी वो घटना को याद करके बहुत आनंद होता है कि हम लोग एक गाड़ी के लिए भिक्षा मांगने के लिए यहाँ से हम्पी तक गए थे। हम्पी तो साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर रो रो के पुकार रहे थे, उनको हाथ में गेहूँ वस्त्र था और उनको विनती कर रहे थे कि आप इस वस्त्र पे उतर कर आइए और हमारी गाड़ी जब आएगी तो इस वस्त्र का झंडा बनाकर हम अपने गाड़ी पर लगाएंगे, और हर बार जब सेवा में जाएंगे तो झंडा आपका लगा कर जाएंगे, कपित ध्वज लगा कर जाएंगे। और उसके बाद में जो कीर्तन हुआ ना, ऐसा धुआंधार कीर्तन मैंने आज तक लाइफ में कभी अटेंड नहीं किया। उसमें इतनी ऊर्जा थी, इतनी शक्ति थी। 2.5 घंटे का कीर्तन हुआ, 2.5 आवर्स। ऐसा अनुभव हो रहा था कि हनुमान जी ने संचार किया है शरीर के अंदर। उसके बिना एक साथ गाना और कूदना 2.5 घंटे के लिए ऊंचे उच्चतम आवाज में मुमकिन नहीं था। वो भी 2.5 घंटे के आखिरी मिनट तक उतना ही उत्साह था और शक्ति थी। बोलते ना क्रिसेंडो, क्रिसेंडो मतलब क्या, चढ़ता हुआ कमान, ऐसा कीर्तन था वो। ऐसे बहुत सारे कीर्तन आगे भी किए, लेकिन वो एक एकमेव अद्वितीय कीर्तन था, न भूतो न भविष्यति, कम से कम हमारे अनुभव में, हमारे जीवन में। और चमत्कार ये हुआ कि हम लोग हम्पी से यात्रा करके, हमारे गुरुदेव साथ में थे, हमारे गुरुदेव ने उस बहुत ही अद्भुत कीर्तन में अपने हाथ से नगाड़े बजाए। दर एक बड़ा नगाड़ा था दीवार पर लटका हुआ था, वो टेबल पे चढ़ गए, दो डंडी निकाली और नगाड़े पे म्यूजिक देना शुरू किया, और वो भी बहुत आनंद थे उसमें, इतना आनंद में कीर्तन हुआ था। केवल गिने चुने 5-6 लोग थे और गुरुदेव भी थे, और वो प्रार्थना का इतना अद्भुत चमत्कार हुआ कि जैसे वहां से लौट के आए ना, अभी लौट के अगर घर में अभी प्रवेश नहीं किया था, तुरंत फोन आया अरविंद मफतलाल जी के ऑफिस में, ऑफिस से, कि हम आपको वो गाड़ी जो है वो देंगे। उसके परी इसके पहले एक फोन आया, डॉक्टर एनडी देसाई, श्रीनाथ जी दास, उनका ऑफिस से फोन आया कि आपको हम उसका जो है ना चैसिस बोलते हैं उसको, सांगाड़ा कह सकते हैं उसको, मूलभूत 4 पहिए इंजन, और वो हम आपको देंगे। उसकी कीमत उस समय 1,10,000 रुपए थी, आप सोच सकते हैं 1,10,000 में भी मोटरसाइकिल भी आएगी तो भी ठीक है, अच्छा ही है। चैसिस थी, टाटा 407। और उसके बाद तुरंत मफतलाल जी के ऑफिस से फोन आया कि उस चैसिस के ऊपर बॉडी जो है ना वो हम लोग बनाएंगे। अभी तक सामान उतरा भी नहीं था, तब हनुमान जी ने चमत्कार कर दिया। इतना अद्भुत अनुभव था वो, आप यकीन नहीं कर सकते, इतना तत्परता से उत्तर मिला, और एक हफ्ते में वो गाड़ी आ गई। और भी कैसे आई पता है, गेहूं में रंग की गाड़ी आई, वो सैफरन कलर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान ही आ रहे हैं ऐसे, लिटरली, मैं आपको कभी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ऐसा लग रहा कि हनुमान जी आ रहे हैं, जिनको पुकारा वही आ रहे हैं। तो वस्त्र तो लाया था, उस पर हमने फिर हमारे चेयरमैन जो है ना अरविंद मफतलाल जी के पुत्र ऋषिकेश मफतलाल, उनकी पत्नी रेखा मफतलाल, उन्होंने उस कपड़े पर हनुमान जी का एम्ब्रॉयडरी किया अपने हाथ से, उस झंडा बनाया उसका। फिर बॉडी बिल्डिंग के साथ में हमने वो झंडा भी झंडा बना दिया, और हर रोज हम उस झंडा को लगा के कैंप में जाते थे हनुमान जी का। कभी किसको देखना है वो गाड़ी तो मेरे ऑफिस में आइए, अभी एकमेव चित्रपट बचा हुआ है उसका, बाकी सब हवा के साथ समय के साथ कहाँ उड़ गए पता नहीं। एक ही चित्रपट है मेरे पास फ्रेम किया हुआ, जो लेकर फिर हम लोग वो गाड़ी बनाकर रिकॉर्ड टाइम में हमने उसको पूरा किया। मैं और डॉक्टर बीसी शाह 6 हफ्ता गैरेज में रहे, निकोलस गैरेज वसई, अभी भी है वो। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे गैरेज के इतिहास में 6 हफ्ते में कोई बाड़ी बनकर तैयार नहीं हुआ। हम लोग खड़ा रह के उनके सर पे खड़े होके उसको एक एक डिटेल अपने हाथ से बनवाया, डिजाइन भी डॉक्टर बीसी शाह आर्किटेक्ट। और खड़े होकर बनाया, और हमारा लंच वसई स्टेशन पर वड़ा पाव ये हमारा लंच हुआ करता था। लेकिन बहुत प्रेम से उसको बनाया, और फिर उसके बाद में 6 अप्रैल 1990 इस दिन वो आया, वो गाड़ी बनकर आई, रेडी बनकर आई। फिर उसको सजाकर हम लोग एयरपोर्ट में गुरुदेव को बुलाने मतलब लेने के लिए गए थे, तो गुरुदेव इसमें बैठकर आए थे। ये हमारा हनुमान का सबसे पहला संपर्क। और कैसा है ना भाई, ऐसे अनुभव को कैसे कोई भूल सकता है, इतना अद्भुत, इतना उत्कट, इतना तीव्र अनुभव कौन भूल सकता है। उसके बाद में हनुमान जी का जो आज का विग्रह आपको दिखाई नीचे है ना, अभी जो पूजा किया सेकंड फ्लोर पे, वो विग्रह पालघर के हमारा सेंटर था, श्री चैतन्य सेवा केंद्र, वहाँ पर हमारे डॉक्टर संख्य जो है ना MD होने के बाद में 20 रुपये में मरीज देखते थे, 20 रुपीज़, डॉक्टर दलाल, डॉक्टर संख्य और डॉक्टर शेट्टी दादर से आते थे हफ्ते में एक बार 20 रुपीज़ में देखने के लिए। और कभी दादर से पालघर जाने के बाद में एक मरीज या दो मरीज या कभी 9 मरीज ऐसा भी होता था, लेकिन श्रद्धा से आते थे इतना दूर। वहाँ पर ये हनुमान जी प्रकट हुए थे, जयपुर से उनको लाया था हमने। उसके बाद जब मीरा रोड में आए दशहरे के दिन 1993, 20 अक्टूबर दशहरे का दिन था वो 93 का, उस दिन उनका अभिषेक किया और हमारा जो आज का भक्ति वेदांत पॉलिक्लिनिक है ना, सेक्टर 5A5, उसको सामने वहां पर रख के उसका उद्घाटन किया था, श्री चैतन्य पॉलिक्लिनिक का। तो वहां पर 5 साल रहे हनुमान जी। फिर उसके बाद भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जब हुआ तो वहां से उनको यहां लाया गया, और वो आज जो जगह पर खड़े ना वहां पर नहीं थे वो, आज जिस जगह पर खड़े हैं उसके लेफ्ट साइड में कोना था, कोना एक कोने के में छोटा सा मंदिर था, छोटा सा एकदम सिंपल सा मंदिर था, उसमें वो कई साल रहे, कम से कम 1998 से लेकर नॉट लेस देन 10 ईयर्स उधर ही रहे। एक दिन गुरुदेव जी आए हॉस्पिटल में, बोले हनुमान जी के लिए बहुत बढ़िया मंदिर बनाओ। उस समय प्रभुपाद जी का मंदिर भी बहुत सिंपल था, जो आज नीचे है ना उससे पहले एक था, एकदम सिंपल सा था। तो उस बहाने दोनों मंदिर नए बनाए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को ऐसा स्थान दो, एकदम प्रोमिनेंट स्थान और आसन भी ऐसा दो उनको लिए। तो बहुत ही प्रयासपूर्वक प्रेम पूर्वक दोनों मंदिर बनाए गए, और आज हमारे हनुमान जी जहाँ विराजमान हैं उस जगह का उद्घाटन किया गया। और विशेष बात यह है कि हमारे आदरणीय वंदनीय और प्रिय राजेंद्र सुबेदी, इन्होंने शुरुआत से आज तक हनुमान जी का सेवा किया। कौन करता है पता नहीं चलता है, शबरी थी ना शबरी, वो सब तैयारी करती है ना साधुओं के लिए, कोई देखता नहीं था कौन कर रहा है। एक दिन साधुओं को जल्दी उठकर झाड़ी में छुपकर देखना पड़ा, कौन कर कौन रहा है। तो देख रहे हैं कि अंधेरे में एक लड़की पेड़ से नीचे उतर के आ रही है, और सब यज्ञस्थली साफ कर रही है, फूल बिन रही है, पत्ते बिन रही है, सब जगह पर रख रही है, और फिर जाके पेड़ पे छुप रही है। तो उन्होंने एक दिन उसको पकड़ा, और तब वो बोले हाँ मैं कर रही हूँ। उस तरह से हमारे हनुमान जी की सेवा, आप जब भी आएंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं कौन कर रहा है, सब रेडी है, माला पहनी हुई है, श्रृंगार किया हुआ है, सब कुछ रेडी है। तो 4 बजे उनका जगाते हैं उनको, तो आपको तो जगह ही मिलते हैं, वो कभी भी जब भी देखे जगह ही मिलते तो वो दास्यत्व जो है ना हनुमान जी का, उसका संचार हुआ है उनके अंदर। कैसे कि कोई थैंक यू बोले या ना बोले, कोई तारीफ करे या ना करे, कहीं अवार्ड मिले या ना मिले, हाँ हमारी लॉग बुक में नाम आए ना आए, रामशरण प्रभु लॉग बुक में नाम आए ना आए, कई क्या कहते हैं उसको, आपने क्या दिया उसको, व्हाट इज दैट यू गिविंग, हाँ सेवा शिरोमणि अवार्ड मिले या ना मिले, सेवा चलती रहेगी। ऐसे हनुमान जी का जो भाव है ना वो उनके संचार हुआ है। तो हम अगर आज के दिन में उनका नाम नहीं लेंगे ना तो हमें अपराध लग सकता है, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए सब बोल रहा हूँ। ऐसे सुंदर व्यक्ति हमारे अस्पताल में 1992 से जुड़े हुए हैं, उनका गौरव करना ही हनुमान जी का गौरव है, क्योंकि तो हनुमान जी स्वयं सेवा शिरोमणि है ना, हु इज द ओरिजिनल सेवा शिरोमणि, हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी का सेवा कैसा है, डॉक्टर संके क्या बोलते हैं, 2 चीज हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट है, एक है सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, और दूसरी क्या है तत्परता, है ना बोलते हैं ना सेंसिटिविटी एंड इमरजेंसी, व्हाट इज इट है, अर्जेंसी ऑफ एक्शन। तो हनुमान जी ने सेंसिटिविटी कैसे दिखाया, जब सीता जी को वो मुद्रिका लेकर गए थे ना ढूंढने के लिए लंका में, तो कितने विचार किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया अभी बोला मैंने से अपने हाई को, कभी कभी क्या होता ना कोई सिंपल सा आदमी होता ना उसको अगर बड़ा आदमी कोई आज्ञा देगा ना कि जाओ ये करके आओ तो इतना ही गेट्स सो एक्साइटेड, फिर वो कोई नियम पालन नहीं करता है, मुझे साहब ने बोला है बस, वो बात पर वो कहीं भी घुस जाएगा, नॉक भी नहीं करेगा, एक्सक्यूज भी नहीं बोलेगा, नहीं मुझे सबसे बड़े आदमी ने आदेश दिया है। लेकिन फिर भी हनुमान जी को प्रभु राम की तरफ से आदेश था कि लंका को ढूंढ, सीता को लंका में ढूंढना है और मुझे मुद्रिका देना है और संदेश देना है कि मैं आऊंगा, डोंट वरी। तो जब वो सीता जी को देखते हैं कि हाँ ये अशोक वाटिका है, इसके इस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है, और वो पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले जानते थे उसको, पहली बार देख रहे हैं, जैसे वर्णन किया था, जैसे जो समझ गया कि यही सीता देवी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका रोना, उनका परेशान चेहरा देखकर समझ गया कि यही सीता देवी। लेकिन झट से जाके बोले नहीं, मैया ये देखो मैं राम की तरफ से आया हूँ, ये मुद्रिका ले लो, मेरा मैसेज आपके लिए ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं। वो सोचे कि देखो कितनी देर से यहाँ बैठी हुई है, राक्षसियों से घिरी हुई है, रावण आ रहा है, धमकी दे रहा है, क्या क्या प्रलोभन दे रहा है, मैं काट के खा जाऊंगा आपको, ऐसे भी बोल रहा है बीच में, तो कितनी डरी डरी सहमी सहमी होंगी वो। और जितनी भी राक्षसियाँ थी ना उनके पास पास, वो सब लोग ऐसे ही कभी धमकी दे रहे हैं, कभी प्रेम से बोल रहे हैं, कभी शस्त्र निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे ये न कहने प्रकार नहीं, कभी भेष बदल रही है। एक बार रावण आया था और कटा हुआ राम का सर लेके आया था, देखो तुम्हारा पति का वध कर चुका हूँ, अभी किस लिए रो रही हो, सब माया भी तंत्र तंत्र का। तो ऐसा भी हुआ था, तो ये सब जानते थे कि ऐसा सब हुआ है। तो मैं अगर झट से कूदूंगा तो लगेगा कि राक्षसी कोई बंदर बनकर आया है फंसाने के लिए, हाँ षड्यंत्र बनाकर उल्लू बनाने के लिए, अभी राक्षस कोई मेरा रूप धारण करके, ऐसा लगेगा उनको। इसे कहते हैं सेंसिटिविटी, हाँ सोच रहे हैं वो जिनके लिए मैसेज देना है उनको क्या लगेगा। तो उन्होंने फिर पेड़ पर बैठकर ना रामायण का बखान शुरू किया, पूरा रामायण का वर्णन, रामलीला का वर्णन शुरू किया, और वहां तक लेके आए जहां तक अभी वो जिस स्थिति में वो है। तो सीता के मन में एक अनुकूल भावना निर्माण हो गई कि हाँ कौन है वो व्यक्ति, मुझे उसको मिलना है, कौन ये सब कुछ जानता है, इतना डिटेल में कौन जानता है, कहाँ हो, ऐसे भावना आई। मतलब जब उनको मिलने में उत्सुकता निर्माण हुई तब वो नीचे कूदे, और तब जो कुछ करना था वो किया, झट से नहीं किया कि मुझे राम का आदेश है चलो। एक है आदेश पालन करना और एक है आदेश उत्कृष्ट तरीके से पालन करना, श्रेष्ठ तरीके से, ना बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये हनुमान जी का सेंसिटिविटी है। जब भी प्रभु रामचंद्र आए ना मतंग पर्वत के पास में, दो मानव आ रहे हैं धनुष लेकर, क्षत्रिय का शरीर है बलदंड, धनुष का मार्क भी है कंधे पर, लेकिन जटा और पेड़ की खाल धारण करके आ रहे हैं। थोड़ा सा अचंबा होता है ना कि अरे क्षत्रिय भी है वनवासी भी है, क्या समझ में साधु लग रहे हैं, कौन है कौन ये। तो सुग्रीव को डाउट आया कि ये ना बाली के आदमी रहेंगे, कैसे भी करके मुझे यहां से घसीट के निकाल कर मारने के लिए बाली के आदमी होंगे शायद। तो सुग्रीव ने कहा हनुमान जी आप जाओ और पता करके आओ ये कौन है, क्योंकि उन्हें हनुमान से अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति कोई लगा नहीं जो इसका रहस्य का भेद आके बताएगा कि ये कौन है। इतनी बुद्धि इतना चातुर्य, ये हनुमान जी अकेले थे ऐसे। तो हनुमान जी कैसे गए, वो बंदर के रूप में नहीं गए, साधु का भेष बना कर गए। बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर बातें की उनसे, सारा उनका जो है ना रहस्य खोल दिया उनसे, सब कुछ पूछ के जानकारी पूरा कर लिया। और उनको जब पता चला ये तो मेरे प्रभु रामचंद्र है, मेरे आराध्य दैवत, मेरे भगवान है ये, तो तुरंत अपना वेश बदल कर दिया और हनुमान जी के रूप में आए। अभी समझो वाले के लोग हैं तो भी एक सोच विचार करना पड़ेगा कैसे हैंडल करना है, अगर कोई हित चिंतक है तो भी सोचना पड़ेगा कैसे करना है, अगर शत्रु का आदमी है तो सोचना पड़ेगा कैसे मतलब एवरीथिंग इज अनसर्टन, हाँ कुछ पता नहीं है क्या कौन है ये लोग। और अगर हमारे अनुकूल व्यक्ति है, हमारे लिए वंदनीय व्यक्ति है, तो भी उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे और जानकारी कर लिया। अच्छा हुआ कि उनके भगवान आराध्य दैवत भगवान रामचंद्र थे वो, ठीक था। लेकिन अगर उनको अगर कुछ कठोर प्रश्न पूछते तो उनका अपमान हो जाता ना, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, किस कारण से आए हो, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का, ऐसे पूछना भी एक काम है। लेकिन अगर हमारे अनुकूल व्यक्ति होंगे तो प्रश्न भी ऐसे करना चाहिए, हो सकता है अनुकूल व्यक्ति हो, राक्षस न हो। सारी चीजों को ध्यान करते हुए उन्होंने सुग्रीव के लिए पता कर लिया कि ये दोनों कौन है। जब पता चला रूप धारण कर लिया अपना मूल रूप और कंधे पर बिठा कर उनको आकाश में उड़ा कर लेके आए पर्वत पर। और तत्परता कैसे दिखाई, हाँ अर्जेंसी, आप सब लोगों को नर्स बनना है आगे जाकर, विद्यार्थियों को जो बने हुए हैं उनको भी याद रखना है, और केवल नर्स लोगों के लिए नहीं है, डॉक्टर लोगों के लिए भी है, पैथोलॉजिस्ट लोगों के लिए भी है, टेक्नीशियन लोगों के लिए भी है, जितने भी लोग मरीजों के संपर्क में हैं, रिसेप्शनिस्ट भी है, सिक्योरिटी है, अकाउंट है, बिलिंग है, हाँ हाउसकीपिंग लोग हैं, सब लोगों के लिए क्या है अर्जेंसी, मतलब हमारे व्यवहार में लगना चाहिए कि मरीज के लिए अर्जेंट सेवा करना जरूरी है। मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि अरे क्या है, ऐसे कैथ लैब में बोलते हैं रोज आते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट, क्या नई बात है, इधर आप पहले बार नहीं हो, पहले नहीं हो आप, यहाँ पर सैकड़ों आ चुके हैं पहले, सब लोग ऐसा छाती पकड़ के आते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए उनकी एक ही छाती है और वो पहली बार छाती में दर्द दुख रहा है ना, जैसे आंखों के ऑपरेशन में कैसे होता है, अरे हमने हर साल 4,000 ऑपरेशन किए, आज तक 50,000 से ऊपर ऑपरेशन हो चुके हमारे, पहली बार कर रहे हैं क्या, लेकिन जिसका कर रहे हैं उसकी आंख एक ही है, मतलब दो आंखों में से एक आंख खराब हो गई है और एक ही ऑपरेशन में एक ही पहली बार कर रहे हैं और वो फर्स्ट एंड लास्ट है उसका, खराब होगी तो 100% फेल्योर है और अच्छी होगी तो 100% यश है उसके अंदर। आप बोलेंगे 50,000 में 10 खराब हो गए, क्या परसेंट है, कुछ भी नहीं है ऐसा लगेगा, लेकिन उसके लिए 100% है वो, तो यू कैन थिंक कि बुआ उसमें क्या बड़ी बात है, बैठो उधर आराम से, क्या है पहली बार कर रहे क्या, ऐसे बहुत कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए हमने, कॉम्प्लिकेटेड भी किए हुए ऐसा है सभी, तो तत्परता दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आपको इतना टेंशन नहीं है उसका, आप बहुत एक्सपर्ट हो, फिर भी मरीज के सामने वो तत्परता दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से मरीज के हृदय में, मतलब जो देख रहे हैं उनके रिश्तेदार जो है आजू बाजू के लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास निर्माण हो जाएगा कि ये लोग अपना काम जानते हैं और काम का गंभीरता भी जानते हैं और गंभीरता से कर भी रहे हैं और मैं अभी रिलैक्स हो जाता हूं। और अगर आप धीरे चल रहे हो ना तो वो टेंशन में आ जाएगा और अर्जेंट में वो काम करेगा, और जब तक आप नहीं दिखाएंगे अर्जेंसी तब तक वो अर्जेंट में रहेगा, जब आप उसका अर्जेंसी अपने ऊपर लेंगे वो रिलैक्स हो जाएगा सिंपल है ना ये तरीका। जब आप देख रहे हैं कि कामकाज करने वाले जो कुशल लोग हैं, नर्स है, आया भाई, अटेंडेंट, सब असिस्टेंट जितने भी है, वो लगे हुए जोरदार भाग रहे यहां से वहां, तो वो आराम से बैठ जाता है, तो अभी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके अर्जेंसी दिखाने से उनकी सारी चिंता का हरण हो रहा है। तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और ये डायग्नोसिस होता है कि इसको संजीवनी बूटी चाहिए और वो हिमालय में है, और ये सब कहां पे हो रहा है, इसका लोकेशन क्या है, हाँ अरे भारतवासियों, आप सबके मुंह से जय जय घोष, क्या कहते हैं ना, घोष होना चाहिए, घोष आकाश में घूमने वाला आवाज निकलना चाहिए कि कहां हुआ था ये, हाँ बोलो ना, श्रीलंका में, कंफ्यूज क्यों होते हो, ये सब ब्रिज बांधकर कहां पर गए, मलबार हिल में गए थे क्या, ये ब्रिज बनाकर इंडिया से श्रीलंका में गए थे और वहां पर वॉर हुआ था, इधर इंडिया में वॉर नहीं हुआ था, समुद्र के अंदर वॉर नहीं हुआ था। श्रीलंका पहुंचने के बाद में उनके घर जाकर बोलते ना हमारे, अरे घर जाकर मारेंगे तुमको प्रभु ने घर जाकर आक्रमण किया उनकर, घर जाकर धुलाया उनको अच्छी तरह से। तो ये श्रीलंका में बेहोश गिरे थे और हिमालय किधर है, भारत के उत्तरतम दिशा में, उत्तरतम कोने में, भारत का एंड है हिमालय। तो आप बोलेंगे वैभव आप जाओ हिमालय अभी ले गया हो, तो वैभव साथ में कोई आएगा क्या अकेला कैसे जाऊंगा, फिर पहचानूंगा कैसे, कितने प्रश्न मन में आएंगे आपके अगर आपको बताया जाएगा। हनुमान जी गए मैं जाऊंगा, और तुरंत गए वहां पर, और बाद में वहां का पता चला कि अरे मैंने तो पूछा नहीं, बूटी को पहचानना कैसे वो तो भूल ही गया मैं, और वो जो था ना पर्वत जिसमें वो बूटी थी, वो ना प्रकाशमान बूटियां थी सब उसके अंदर। हम लोग अभी हनुमान जयंती को सब लाइट लगाए ना, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल लाइट लगाए, लेकिन वो पर्वत में जितनी बूटियां थी ना, मतलब पौधे थे, जड़ियां थी, वो सब प्रकाशमान थी। आप कल्पना कर सकते हैं, पत्ते भी लाइट लाइट वाले पत्ते जिसमें प्रकाश निकल रहा है, प्रज्वलित, प्रकाश से प्रज्वलित, सारे ऐसे ही थे। लेकिन जैसे हनुमान आ गए ना, सबने अपना प्रकाश बंद कर लिया, जैसे मानो बटन बंद कर दिया, लाइट का बटन बंद कर दिया, कुछ देखेगा ही नहीं अभी, तो पहचानेंगे कैसे। आप बोलेंगे जाके पूछ के आओ उनको कैसे पहचानना है, तो टाइम किधर है? उनको समय दिया था अगले दिन के सूर्योदय के पहले अगर जड़ी बूटी नहीं पहुंचती है संजीवनी तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो समय नहीं वहां पर। किसको पूछेंगे? तो वहां पर कोई है ही नहीं पूछने के लिए, भाई कैसे, कौन है ही नहीं उधर, हनुमान जब गए वहां था तो पूरा पर्वत ही उठा लिया उन्होंने। इमेजिन, आज हम लोग उसको देख के हंस भी सकते हैं, कौतुक भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय का कल्पना करो जिस समय हनुमान जी वहां पर थे अकेले, इमरजेंसी में आए हुए हैं, सलाह करने के लिए कोई नहीं, वैद्य को लेकर नहीं आए साथ में, वो टेस्ट करने के लिए अकेले आए थे, हवा की ज्यादा गति से उड़कर आए थे उधर, और अकेले अभी प्रश्न पड़ रहा है मन में क्या करूं, अभी पूरा पर्वत उखाड़ लिया और पर्वत को उठा कर लेके आए। वो मूर्ति हमारे फार्मेसी में है, पर्वत को उठाए उड़कर आकाश में आए, उससे उनका क्या क्या दिखता नहीं है, समर्पण दिखता है, बुद्धि दिखती है, चातुर्य दिखता है, बल दिखता है, निश्चय दिखाई पड़ता है, परम सेवा भाव दिखाई पड़ता है, तत्परता दिखाई पड़ती है, हर चीज दिखाई पड़ती है उसके अंदर, एक मूर्ति के अंदर। हाँ, कैसे प्रभु राम है हमारे, कैसा सेवक है उनका, युग युग तक हम उनका गीत गाते रहेंगे उनके गौरव का, ऐसा एक कार्य किया उन्होंने, एक बार नहीं किया, अनेक बार किया। इम्पॉसिबल होता ना, मतलब अशक्य, नामुमकिन, हिंदी में नामुमकिन, इंग्लिश में इम्पॉसिबल, मराठी में अशक्य, ये तीनों शब्दकोश और भी शब्दकोश निकालो, उसमें जो नामुमकिन वाला जो वर्ड होगा ना वो उनके शब्दकोश में था ही नहीं। इम्पॉसिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल होता ही नहीं कुछ, भगवान की दया से कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा अटूट विश्वास था उनके अंदर, ऐसा डाउट नहीं था कि हाँ भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, हो सकता है ये भी नामुमकिन हो सकता है, देखेंगे कैसे होता है, ऐसा नहीं, नामुमकिन है ही नहीं है, मुमकिन होना ही है, इसको भगवान की सेवा में है तो मुमकिन होना ही है, ऐसा अद्भुत भाव था उनके अंदर। और जितने भी जीवन में कार्य किए ना, कभी अनसक्सेसफुल, अयशस्वी कभी हुए नहीं वो, और कभी बड़ी बात क्या है उससे, इतना सारा अद्भुत कार्य जो है ना हनुमान ने किया। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि चार दिशा में चार पार्टी गई सीता को खोजने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास था जिस पार्टी में आप थे हनुमान जी, उसी पार्टी में हनुमान जी आपकी तरफ से सीता का खोज होगी। ये भगवान ने कहा था कि मुझे पहले से विश्वास था कि आपकी पार्टी में ही ये खोज होगी, सीता कहाँ है। इतना सारा शाबाश की मिलने के बाद भी कभी भी हनुमान जी ने गर्व नहीं किया, कभी भी नहीं किया, नम्र थे वो, चाहते ना वो तो उसी समय जब सीता को अंगूठी दिया ना उसी समय रावण को मार के आते थे वो, इतना शक्ति थी उनके अंदर। लेकिन नम्रता क्या है, नहीं इनको मारने का श्रेय ना मेरे प्रभु को मिलना चाहिए, मैं मारूंगा तो क्या मेरा नाम होगा, क्या करना है मेरा नाम लेके, प्रभु को गौरव मिलना चाहिए, इतना मोह है उधर। हाँ, अगर चाहते तो सीता जी को उठाकर लेके आ सकते थे, खेल ही खत्म पूरा, कोई जरूरत ही नहीं टेंशन लेने की, मैं पहुंचा हूं उठा के लेके आता हूं। लेकिन नम्रता कैसे दिखाई, सीता जी का जो पतिव्रता का भाव था ना उसका आदर किया उन्होंने, उनके नाम पे इतिहास होता आज कि हनुमान जी गए और उठा के लेके आए, ऐसा इतिहास होता। लेकिन सीता जी का पतिव्रत्य भाव का आदर रखने के लिए नम्रता से उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, मतलब सारा श्रेय लूटने की संधि प्राप्त है, मौका प्राप्त है, लेकिन नम्रता नहीं दे रहे करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। रावण को भी चैलेंज करते हैं, अरे तुम जानते नहीं हो मैं केवल उनका दास हूं जो आया हूं, अभी तक उनकी पहचान होनी बाकी है, अभी भी सुधर जाओ और सीता को लौटा दो, अभी भी मौका है आपके लिए, क्यों बेकार में वंश का नाश करते हो। कितना साहस था उनके अंदर, आप सोच सकते हो, एक एक राक्षस थे ना वो दरबार में, ऐसे भयंकर राक्षस थे, अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, एक एक का नाम देवताओं से बढ़कर था, उनका क्या शौर्य, उनका बल और उनका कौशल और उनकी प्राप्त की हुई सिद्धियां। इंद्र को परास्त किया था रावण के बालक ने, इंद्रजीत ने, नाम पड़ा इंद्रजीत मेघनाथ का, ऐसे एक एक अकंपन क्या क्या नाम थे उसके अंदर, से भयंकर पराक्रम था उनका, वो सबके बीच में अकेला वानर हनुमान जी। लेकिन जो प्रभु से शरणागत हो गया ना वो निर्भय हो जाता है, अभय चरणार विंदरे, जो प्रभु के चरण में अपने आप को समर्पित कर चुका है उसको भय नाम की चीज होती नहीं कभी। प्रभु कहाँ थे? उधर इंडिया के कोने में थे और ये श्रीलंका में थे, उनके बीच में, कभी भी मार सकते थे उनको सब लोग मिलकर, लेकिन कैसा साहस था उनके अंदर। रावण को पूरा चेतावनी देकर आए, वो मानो एक मौका देकर आए, रावण अभी भी जिंदा रहने का स्कोप है तेरे लिए अभी सोच ले कैसा कर सकते हैं। लेकिन रावण के विरुद्ध था, हमने हनुमान जी के विरुद्ध रावण थे, कैसे? अहंकारी, मद से मत्त हुए थे वो। इतनी चेतावनी देने के बाद भी उनका दिमाग में कुछ फर्क नहीं पड़ा, और फिर जाकर अकेले हनुमान जी ने, और एक नम्रता का प्रमाण देता हूं आपको, जब इन्होंने अशोक वाटिका ध्वस्त करना शुरू किया ना, तो एक राक्षस आया, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, इतना पराक्रमी था वो, उसको मार दिया हनुमान जी ने तुरंत, ऐसे खेल खेल में, कोई शस्त्र लेके नहीं गए थे, ऐसे ही गए थे फिर और राक्षस आए, उनको भी मार दिया। अभी आप सोचो, अक्षय कुमार और दो चार ऐसे महापराक्रमी राक्षस को एक बंदर मार सकता है, ये देखकर रावण भी हैरान हो गया, क्योंकि विशेष ब्रह्मदंड है। बोलते हैं इंद्रजीत तुम जाओ अभी, मतलब एकदम टॉप आदमी को भेज दिया उसने, उसको बंदोबस्त करके लेके आओ। तो इंद्रजीत आया, महापराक्रमी था वो, तो उसने ना ब्रह्मास्त्र ब्रह्मपाश भेजा, ब्रह्मपाश। तो ब्रह्मपाश आया ना, तो ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ हनुमान जी को, और शास्त्र में लिखा है कि हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बंधने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना बल था उनके पास, अगर चाहते थे तो उसको भी परास्त कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का उन्होंने नम्रता से आदर किया, वंदन किया, और ब्रह्मपाश को देखकर खुद ही बंध गए उसके अंदर। यह और एक नम्रता का प्रमाण है। बलवान व्यक्ति को ना जब बल दिखाने का मौका आता है ना, तो वो रुक नहीं पाते अपने आप को, समझो मैं आपको मार सकता हूं और आप मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं जरूर आपको मारूंगा मेरे पास बल है ना, वो मेरे बल को मैं रोक नहीं पाऊंगा, अरे मुझसे ज्यादा कमजोर वाला आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है, वो बालिक ऐसे भाग भाग के आया, अरे वापस सुग्रीव आया, क्या बात है, जाके पीट के आता हूं उसको मैं बीवी बोल रहे मत जाओ, दोबारा आया, पीट पीट के गया था अभी, लेकिन दोबारा आया, मत जाओ, कुछ कारण होगा उसके पीछे, फिर भी भले ना उसके पास, सुग्रीव की इतनी हिम्मत, जाके अभी पीट के आता हूं उसको, और फिर खुद पीट गया बाद में तो ये नम्रता हनुमान जी के पास थी। बल होने पर बल का गलत जगह पर प्रयोग न करना, ये नम्रता का प्रमाण है। और फिर बंद गए, फिर जो सुनाना था वो सुना दिया, फिर बाहर लेके आए, और फिर भी ऐसा एक्टिंग कर रहे कि मैं बंदा हूं, सब लोग उसको बांध के ऐसा पकड़ के रखे हैं, दोरी वरी पकड़ के, बोले अभी इसको पूछ को ना आग लगा देंगे, ठीक है लगाओ लगा रहे आराम से खड़े, लोग बोल रहे अभी देखो बंदर का मजा देखेंगे कैसा, जिनके पूंछ पर बहुत गर्व होता है इनको, और ये पूंछ को आग लगा देना बड़ा मजा देखेंगे सब लोग। जैसे ही आग लगा के हो गया ना, ऐसा झटका दिया ना, सारे राक्षस गिर गए, पचासों राक्षस खड़े थे पकड़ के, कुछ दोरी बांध कर पकड़ के खड़े थे, कुछ पूंछ को पकड़े हुए थे, ऐसा झटका दिया ना सब धराशायी हो गए। जो छलांग लगाना शुरू किया, ये महल से वो महल थे, वो महल से वो महल, रावण का सारा सोने का लंका जो है ना सब जलाकर भस्म कर दिया। रावण भी बाहर आ गया, छत पे आकर देखा, अरे पूरी लंका जल रही है। आप जानते हो लंका कैसे बनी थी? मेरु पर्वत का हिस्सा है वो, वासुकी और वायुदेव में संघर्ष हुआ था एक बार, वासुकी बोल रहे थे मैं बांधूंगा इस पर्वत को, तुम हवा से उड़ा देना, देखता हूं कौन जीतता है। तो बेचारा पर्वत की हालत खराब हो गई बीच में, क्योंकि इन्होंने इतना कस के बांधा था और हवा इतने जोर से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली ब्रह्मा जी आए, बोले ठीक है बाबा, तुम पर्वत को पूछा ही नहीं, मुझे वापरू कि नहीं वापरू, बिना वापरे ही चालू कर दिया तुम्हारा युद्ध उसके ऊपर, छोड़ दो अभी उसको। लेकिन जितना कस के वासुकी ने कसा था ना पर्वत को, जब वासुकी ने छोड़ दिया ना, तो वो हिस्सा टूट गया, समुद्र में गिर गया, और वो था त्रिकुट पर्वत, तीन शिखर वाला। फिर विश्वामित्र आए, अब क्या विश्वकर्मा आए, और कुबेर के लिए वहां पर लंका का निर्माण किया गया, वो लंका ही साधारण चीज नहीं है। फिर कुबेर से रावण ने छीन लिया उसको और अपना बना लिया, और फिर अपना सोने का बना दिया उसको पूरा। इतनी कीमती जो जगह थी ना, जो देवताओं का विहार करने की जगह थी, वो देवता की चॉइसेस्ट मतलब सबसे पसंदीदा जगह थी वो, जहां पर वो अपना विहार करते थे, रिलैक्सेशन पिकनिक मनाते थे, वो जगह रावण ने और उसको कीमती बना दिया, उसमें अशोक वाटिका बना दिया। ऐसी वाटिका इंद्र के दरबार में भी नहीं है, इंद्रलोक में, इंद्र का नंदन वन भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा बना दिया। उसमें रावण विहार करता था, उसको इसने भस्म ध्वस्त कर दिया पूरा। कुछ कितना हिम्मत होगी उसके अंदर, देखो आप, रावण के बीच में अड्डे पर जाकर उसके सबसे प्रिय जगह का नाश कर रहे हैं, उसके बाद सब जला दिया, ऐलान कर रहे हैं अभी तो बॉस आना बाकी है, अभी तो सेवक ही आया है। उधर भी अपने मालिक का गौरव करना भूले नहीं वो। अगर तुम समझते हो कि मैं शक्तिशाली हूं, अरे मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे मालिक को अभी आपने देखा नहीं है, अभी भी आप थोड़ा सा सुधर जाओ, ऐसे हनुमान जी। संवेदनशीलता और तत्परता दोनों उनके अंदर है, बुद्धि चातुर्य है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे अंदर अगर बहुत शक्तियां होती ना तो नेचुरली क्या हो जाता है बताओ, तुम जहां बुद्धिमान भी हो, शक्तिशाली भी हो, अच्छे विद्या विभूषित भी हो, अच्छे पद पर भी हो, बहुत सारा अधिकार भी आपके पास, और सुंदर भी हो ऊपर से, सब कुछ हो आप, तो क्या होता है, हाँ, अहंकार हो जाता है तुरंत ही। अरे हमको तो इतना बड़ा होने की जरूरत भी नहीं है, भिखारी को तो उसके एक पैसे का भी गर्व होता है, पता है ना आपको। जिस ब्रिज पर भिखारी भीख मांगता है उस पर भी अपना गौरव करता है कि मैं दादर के ब्रिज में भीख मांगता हूं। आप तो विद्या विहार के ब्रिज पर भीख मांगते हो, ये एक ही ब्रिज है उसके ऊपर। और फिर जब बेटी की शादी करता है ना तो अपने जमाई को ब्रिज दहेज भी देता है, बोले जमाई राज आज से तुम यहां भीख मांग लो, मैं कहीं और जाके मांग लूंगा। अरे ये तुम्हारा है ही नहीं, वो तो भिक्षा मांग रहे हो वहां पर, दे दे बाबा दे दे ऐसा बोल रहा है। उधर भी गर्व करते हैं कुछ भी ना होते हुए। और अगर कुछ आ गया ना, आप समझो आपके पास कुछ आ गया, समझो कभी भी सोने का अंगूठे देखा नहीं था, वो लड़की ने शादी में अपने मायके से पहना दिया, तो इस पे इतना गर्व करते हैं, देखो देखा आपने, एंगेजमेंट का रिंग है मेरा ये। दो तोले का है, हाँ, कितना गर्व करते हैं हम लोग। तो ये अहंकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये हमारे हनुमान जी कैसे हैं, अरे एक चीज नहीं उनके पास, और इतनी सी नहीं, अनंत मात्रा में एक एक चीज है। बल के बारे में बात करो, विद्या के बारे में बात करो, अरे उनको बचपन में ही सारे ऋषियों ने मिलकर इतने वरदान दिए थे, क्योंकि इंद्र ने उन पर वो वज्र का आघात किया तो बेचारे बालक हनुमान हनु पे आघात हो गया ना उनके ऊपर, इसलिए हनुमान नाम पड़ा उनका। तो यहां पर आघात हुआ, वज्राघात हुआ, तो बेहोश हो गए ना वो, तो वायुदेव ने सबका हवाई रोक दिया, हम लोग क्या बोलते हैं, हवाई टाइट कर दिया सबका, पूरा टाइट, मतलब क्या, हाथ भी ऐसा ही होता है ना, वो क्या मॉल के बाहर होता ना, ऐसा ऐसा रहता है वो, हिलता नहीं है, पलके भी झुकाता नहीं है, क्या हो गया, हवा पूरा बंद हो गया, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसे केवल मॉल के बाहर एक आदमी का नहीं, पूरा विश्व का हवा बंद कर दिया उन्होंने, तो सब लोग घबरा गए और भाग भाग के आए, और वायुदेव का ब्रह्मा तक ने विनती किया, बचाओ हमें, अभी बंद करो, हवा बंद मत करो, क्योंकि हवा बंद करने के बाद कितना जिंदगी रहेगी। तो फिर वो मान गए, तो रिटर्न गिफ्ट, मतलब आपने हमारी बातें मानी, हवा शुरू कर दिया, पूरा सृष्टि का चलन चालू हो गया, तो सब लोग ने क्या किया, वायुदेव को खुश करने के लिए उनके बालक को इतने वरदान दिए, इतने वरदान दिए कि आज तक किसी व्यक्ति को इतने वरदान एक समय प्राप्त नहीं हुए, इतने वरदान प्राप्त हुए थे। अब आपको एक बताता हूं, एक सूर्यदेव ने कहा कि मैं आपको विद्या दूंगा, तो ठीक है सब हो गया ना। एक तो सूर्यदेव ने कहा चलो आ जाओ गुरुकुल में आ जाओ, लेकिन मेरा गुरुकुल ना यही रथ है मेरा, ये रथ जो है ना इसमें मैं जाता हूँ, सैकड़ों घोड़ों को लेकर हर जगह पर प्रकाश देता हूँ, सूर्यास्त सूर्योदय होता है ना, तो मुझे घूमना पड़ता है, मैं एक जगह रह सकता नहीं हूँ, तो मेरे रथ पर आकर बैठ जाओ आप, और मैं आपको मेरा काम करते करते सिखाऊंगा, सारे वेद सिखाऊंगा। आप लोग क्या करते, अच्छा है बाबा बाजू में बैठ कर सिखा रहे तो ठीक है ना, इतना टेंशन क्यों लेना है। वो बोलते नहीं, मुझे विद्या प्राप्त करनी है तो मैं गुरु के साथ बैठ कर विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, जिस स्थान पर जिस स्तर पर गुरु है उसके नीचे बैठकर मुझे सीखना पड़ेगा, और बैठने का सवाल ही नहीं है, वो भी चल रहे तो मुझे भी चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपके रथ के सामने उल्टा दौड़ूंगा और आप मुझे पढ़ाते रहना। कितने साल तक हनुमान जी उल्टे दौड़ते रहे, क्योंकि सूर्य तो अपनी समान गति से आगे बढ़ते रहते ना, उनको तो हाई स्पीड लो स्पीड नहीं है, उनका स्टेडी स्पीड है, उससे ही जाते रहते, उनको चलते रहना पड़ता है, चराई वेती चराई वेती। पूरा समय जब तक 18 विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो भी गोल्ड मेडल, हाँ सबसे हाईएस्ट रूप में, तब तक उल्टा दौड़ते रहे। कोई विद्यार्थी है क्या आज ऐसे आज तक सुना है क्या आपने? आपको बोलेंगे एक दिन भक्ति विधान से उल्टा चल के जाना है पीवी दोषी में, एक ही दिन साल में आपकी तपस्या है, ऐसे हनुमान ने कि एक दिन करना है आपको, कौन करेगा क्या? कितना टेंशन लेंगे आप, एक 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 दिन जाना है, एक दिन खाली, कम से कम मजे से जा सकते हो आप, अरे चलो एक दिन मजा कर लेंगे। अरे अमिताभ बच्चन के लिए भी एक दिन वो आदमी पार्ले से उल्टा चलकर सिद्धिविनायक तक आया था, वो पेट में घुसा था ना उसके, तभी याद है आपको, तो आप बच्चे थे शायद या नहीं थे शायद दुनिया में। तो ऐसा है वो हनुमान जी, नम्रता का शिरोमणि है वो। गुरु जी बोले थे बैठो मेरे बाजू में, मैं सिखाता हूं, तो कोई अगर बैठे तो कोई अपराध थोड़ी होता, लेकिन उनकी देखो कैसी मति है कि गुरु के स्तर से नीचे होने के बगैर सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, गुरु से बराबरी शिष्य कभी कर नहीं सकता है, और वो भी शिक्षा के लाने के पहले ही, वो कैसे हो सकता है? आदर्श है हनुमान जी हमारे, विद्या कैसे प्राप्त करनी है, किसी से कैसे सीखना है, नम्रता एक ही प्लेटफॉर्म है। अगर कुछ सीखना है लाइफ में हमको, विद्या प्राप्त करनी है, नम्रता के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है टू लर्न। अगर आप 60 साल के भी होंगे, अगर आपको कुछ और सीखना है तो आपको नम्र होकर सीखना पड़ेगा, तब वो आप पूरी तरह सीख सकते हो। ऐसे ही हनुमान जी। और एक नम्रता का प्रमाण है उनका, आप सुंदरकांड पढ़ेंगे ना रामायण का, तो इतना पराक्रम किया है, कहते हैं कि सुंदरकांड का केवल पाठ करने से आप भी पराक्रमी हो जाओगे, पराक्रम करने की जरूरत नहीं, खाली पाठ करेंगे ना उसका, तो भी आपके जीवन में यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इतना सुंदरकांड का पढ़ने का महात्म्य है, तो सुंदरकांड जिसने किया उसका महात्म्य कितना रहेगा, इतना पराक्रम किया उन्होंने। ये पूरे विश्व में त्रेता युग में हनुमान जी को परास्त करने वाला कोई था ही नहीं, इतने बड़े वीर थे वो। लेकिन जब युग बदला और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तभी भगवान कृष्ण ने, जो राम थे वो कृष्ण बनकर आए, उन्होंने हनुमान जी को क्या आदेश दिया कि मेरे प्रिय भक्त जो अर्जुन है उसके रथ पर ध्वजा पर आप बैठो और गर्जना करते रहो ताकि शत्रु के हृदय में भय पैदा हो जाए। अरे कितना फालतू काम दिया एक्चुअली। जस्ट सोचो आप ना, अभी हनुमान जी आपको जानते हो क्या है, उनके लिए कहना कि एक आप खाली अभी चिल्लाते रहो कुछ करो मत, हनुमान जी कहेंगे अरे वो जो पांडव है ना उनको छुट्टी दे दो आप, जरा बहुत परेशानी से गए, वो इतने साल जंगल में रहे, क्या क्या कष्ट किया, उनको क्यों कष्ट देते हो, उनको तम्बू में बिठाओ, अच्छा खाना पीना खिलाओ, मैं अकेले सबको मार के आता हूँ, विजय श्री आपको देता हूँ, सिंपल, क्यों कष्ट करते हो इतना? ऐसा प्रश्न हनुमान ने किया मन में अपने। प्रभु ने कहा है चिल्लाना है तो चिल्लाना है, प्रभु को बताना नहीं, प्रभु आपको भूल गए क्या मेरे पास क्या क्या शक्ति है? प्रभु जी आप अवतार बदली करने में भूलते भी हो क्या? तभी तो आपको याद था सब कुछ, अभी आप भूल गए क्या? मैं आपको याद दिला रहा हूं, मेरे पास ये शक्तियां हैं, इतने इतने अस्त्र है, ये 18 अक्षर सैन्य क्या होता है, इसके कई गुना सैन्य मैंने रावण की सेना में परास्त कर दिए थे, कई गुना सैन्य, शस्त्र वाले नहीं अस्त्र वाले, मतलब मंत्र से जो बोलते हैं ना वो अस्त्र वाले, कई सेनाओं को धराशायी कर दिया था हमने, वो भी ऐसे पत्थर और इसमें से गधा लेकर हाथ में। तो इतना को आप टेंशन लेते हो, मुझे पता ना मैं करता हूं सब काम। सेवक की कभी भी मति ऐसे नहीं होती है कि स्वामी को सिखाया जाए कुछ, बताया जाए कुछ, सुझाव दिया जाए, नहीं, प्रभु ने कहा है चिल्लाना है तो केवल चिल्लाना है, प्रश्न नहीं पूछना है। 18 दिन तक केवल चिल्लाते रहे, और बीच में कितने प्रसंग आए मालूम है ना आपको, वो जब कर्ण आया था ना, पहले तो भीष्मदेव आए, इतना आतंक मचा दिया, 9 दिन में आधी सेना समाप्त कर दिया पांडवों का, तो वे तंबू में चर्चा हो रही है क्या करें क्या करें, तो भगवान बोलते हैं क्या करें, भीष्मदेव को मारने का उपाय सोचो, तो सब पांडव बोले नहीं 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 कर सकते, भीष्मदेव के गोद में खेले हम लोग तो मरते रहो, फिर मैं क्या बोलूं, लड़ो अभी, लड़ते रहो और मर जाओ एक दिन, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कितना बड़ा समस्या पैदा हो गया। फिर द्रोण का समस्या, वही समस्या, फिर भी भैया भीष्मदेव का इलाज किया, अभी द्रोण का इलाज करना है, कितना टेंशन आया। तो वो हर टेंशन में रथ के ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी बैठ के देख रहे थे ना, कितना उनको टेम्पटेशन होगा, अरे मुझे बोलो ना, मुझे बोलो ना, इतना टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं किया। जैसे मैंने पहले बताया ना, अगर आपके पास बल है और वो दिखाने का मौका दिख रहा है और आपको दिया नहीं जा रहा है मौका, तो आप कैसे बोलेंगे, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी आवाज, सुनो मेरे पास बल है ये करने का, मुझे क्यों भूल रहे हो आप। ऐसा बोलने का कितना आपको अंदर से खतखती होगी आपके। हनुमान जी शायद शांत से, शांति से जो बताया वही कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, भीष्मदेव का समस्या देख रहे हैं, द्रोण का भी देखा, हाँ कर्ण का भी देखा। कर्ण का तो इतना भयंकर था ना, द्रोण तो कम से कम अर्जुन पर प्रेम करते थे, भीष्मदेव भी प्रेम करते थे, कर्ण तो नंबर वन आज राइवल था उनका, आजीवन शत्रु था उनका, उसको मारने का एक ही ध्येय था लाइफ में, और कोई ध्येय है ही नहीं उसके लाइफ में। अपना लाइफ में कैसा गोल है, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करना, इसका लाइफ का एक ही गोल है, खाली अर्जुन को मारना। सच्चा यूजलेस फेलो एक्चुअली। वो व्यक्ति ने कितना परेशान किया अर्जुन को, अगर भगवान नहीं होते ना तो अर्जुन कब का मर चुका होता। एक बार तो ऐसा शत्रु छोड़ दिया उसके ऊपर कि भगवान ने ना पलके लगने के पहले रथ को जमीन पर घुसाया तो सर के बदले में मुकुट उड़ा के लेके गए। इंस्टेंट हाँ एक्शन, मतलब किसी को विचार करने भी नहीं दिया, अर्जुन को पता भी चला नहीं, अरे मुकुट कैसे उड़ गया, वो तो मेरा सर उड़ाना चाहता था ना, तो मुकुट कैसे उड़ गया। बाद में पता चला कि भगवान ने रथ को नीचे किया। ऐसा योद्धा था वो, आंख मिचने के पहले बाण छोड़ता था वो, और इतने अस्त्र थे, एक इंद्र से दिया हुआ अस्त्र था ना वो बचा के रखा था, उसको मैं अर्जुन को मारूंगा उससे। इमेजिन इतना द्वेष, इतना जिजीविषा थी उसके अंदर। ये सारे प्रसंग में हनुमान जी नम्रता से ऊपर चिल्लाते रहे, जस्ट इमेजिन हनुमान जी का भाव देखिए आप। इसलिए हनुमान जी हमको बड़ी शिक्षा देते हैं कि बल होना, विद्या होना, चातुर्य होना, ये हमारा अचीवमेंट नहीं है, ये भगवान की कृपा है, उस पर गर्व करने का कोई काम नहीं है। जो दूसरे का दिया हुआ उधार माल है उसके ऊपर गर्व क्या करेंगे, हाँ कि किसी भाई का चैन पहन के आए, किसी फ्रेंड का अंगूठी पहन के आए और शादी में बहुत दिखा रहे हैं मैं कितना अमीर आदमी हूँ, तो लोग जानते हैं ये सब तो किराए का माल है सब। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किराए के वस्तु पर गर्व नहीं करता, ये जानते हुए कि किराए का है ये। हम शादी में ड्रेस भी किराए में लेके जाते हैं, मैंने आपको मैरिज ड्रेस वो भी किराए में लेके जाते हैं, क्या करना है एक दिन के लिए इतना खर्च क्यों करना है, किराए में मिल जाता है। तो किराए पर पहन कर वो कोई ऐठेगा तो हम लोग हंसेंगे उसको, देखो अभी एक दिन की बोली पे लेके आए। तो हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि इतना अपरिमित बल था उनके अंदर, इतनी अपरिमित बुद्धि थी, इतना अपरिमित ज्ञान था, हर प्रकार के मशवरे में एक्सपर्ट थे वो। सुग्रीव के सबसे कुशल मंत्री थे वो, मंत्रणा करने वाले सबसे कुशल, लेकिन कभी भी गर्व नहीं किया उसके ऊपर, सारा श्रेय भगवान को दिया, इतना से भी आपने रखा नहीं। ऐसे हनुमान जी के अनंत कहानियां हैं, उनके बल की, शक्ति की, साहस की, मंत्रणा की, बुद्धि की, ज्ञान की। श्री हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ कहते कि उनका हनुमान चालीसा केवल उच्चारण पाठ करने से सब भय, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच सब निकल जाते हैं और यश कीर्ति प्राप्त हो जाती है स्मरण करने मात्र से। महावीर का जब ध्यान किया जाए तभी सब खत्म हो जाता है। इसलिए हनुमान जी का जो पर्सनालिटी है ना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनुमान जी हमको सबको सिखाते हैं कि हम सब लोग कौन हैं अपने उदाहरण से। ममय वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सब लोग भगवान के शाश्वत अंश हैं और शाश्वत दास हैं, ये हनुमान जी अपने उदाहरण से हम सबको सिखाते हैं। और सेवा ये कैसे सभी लोगों के जीवन का अविभाज्य अंग है इसका हनुमान उदाहरण देते हैं। हो सकता है कि आप सेवा के अधिक वात्सल्य भाव में हो, दास्य भाव में हो, श्रृंगार भाव में भगवान के साथ में आपका रिश्ता हो, लेकिन सभी भगवान के जो अलग अलग रिश्ते हैं अपने भक्तों के साथ में, उन सभी रिश्तों का स्थायी भाव, मूल भाव दास्यता है। यशोदा भी मां बनकर डांटती है लेकिन दासी के रूप में भगवान की सेवा करती है, दास्यता प्रधान है मां, वात्सल्य के अंदर भी मैं कृष्ण की सेविका हूं, ये भाव प्रधान है उसके अंदर। राधा रानी सबसे बड़ी प्रेयसी है भगवान की, लेकिन सेविका के रूप में, सेवा का महास्वरूप है वो। भले प्रेयसी प्रेयकर के रूप में रिश्ता है उनका, लेकिन राधा रानी का साई भाव सेविका का है। मधुमंगल सुदामा उनको कुश्ती में हरा देते हैं, चितपट करा देते हैं, लेकिन उनकी सेवा भाव में करते वो। और वो सेवा भाव जो है, जो हम सब लोग उसका अविभाज्य अंग है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश हैं। उसका प्रमाण हनुमान जी हमको देते हैं। और मेडिकल हॉस्पिटल में अगर सेवा भाव नहीं होगा तो हमको यहां पर किसी को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल में सब लोग सेवा की अपेक्षा से पीड़ित होकर यहां पर आते हैं ना। इतना दुखी होते हैं कि सोचते हैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां दुख मिटेगा, कहां मिटेगा। हां, यहां मिटेगा, ये अस्पताल है, यहां पर नर्स है, डॉक्टर है, अटेंडेंट है, ये है, वो है, फलाना, बहुत लोग कुशल ट्रेंड एक्सपर्ट लोग यहां पर है, यहां पर मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, इस भावना से आते हैं। और यहां पर आने के बाद में जिनसे अपेक्षा कर रहे हैं उनके अंदर सेवा भाव नहीं है, कुशलता बहुत है लेकिन सेवा भाव नहीं है, फिर भी वो अधूरा काम होगा पूरा। मैं एक्सपर्ट नर्स हूं, मैं एक्सपर्ट डॉक्टर हूं, मैं एक्सपर्ट फलाना हूं, इस भाव से सेवा करेंगे तो अलग परिणाम मिलेगा। और मैं एक्सपर्ट डॉक्टर हूं लेकिन मैं सेवा भाव से करना चाहता हूं तो फिर आपको अलग परिणाम मिलेगा उसका। इसलिए हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में मैं हमेशा बताता हूं, अगर आपके अंदर सेवा करने की इच्छा नहीं है, अस्पताल में मत काम करो, आप लकड़ी के बखार में काम करो, होटल में काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, एयरलाइंस में काम करो, कहां भी करो। यहां पर व्यक्ति मजा करने के लिए नहीं आता है, यहां पर वो दर्द लेके आता है, पीड़ा लेके, यातना लेके आता है, बड़ी अपेक्षा से आशा से आता है कि यहां के लोग मुझे ठीक करेंगे। तो यहां पर तो अविभाज्य रूप से आपको सेवा भाव लेकर ही काम करना पड़ेगा। और सेवा तो करनी ही, हरे कभी को किसी की भी नहीं करेंगे तो अपनी इंद्रियों की करेंगे, अपने मन की करेंगे। हाँ, इंद्रिय दास, मन दास, लाड़ू दास, पेड़ा दास, जलेबी दास बनकर करेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? हम लोग बताओ, रुपया दास, पेड़ा दास, जलेबी दास, पकौड़ा दास, है कि नहीं? हम लोग सब लोग सब दास है उसके, सब बिके हुए हम लोग। लेकिन ये सेवा भाव जो है ये भगवान को रिझाएगा, जो हनुमान जी इसका उदाहरण दिखा रहे। इसीलिए उनको अस्पताल के बीच में खड़ा किया है, हम सबको याद दिलाने के लिए कि वी आर हियर टू सर्व। और वो हमेशा गदा लेके ऐसे खड़े रहते हैं विरासन में, यहां पर ऐसे खड़े। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको वो याद आती रहे कि मैं यहां का सेवक हूं। अभय हस्त कहते हैं उसका, अभय हस्त। और दूसरा कारण ये है उनको वहां खड़ा करने का, सेकेंड फ्लोर पे, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे CCU है, ICU है, ऑपरेशन थिएटर है और कैथलैब है, उसके पहले वहां पर मैटरनिटी भी था। सब ऐसे अति दक्षता वाले भाग वहां पर थे, विभाग इंटेंसिव केयर वाले। और हनुमान जी का हर समय सेवा किधर रहा है? इंटेंसिव केयर में, है ना। जब इमरजेंसी आती है ना, हनुमान जी वहां पर खड़े। रामायण के कितने इमरजेंसी आई, हनुमान जी ने सॉल्व की उसको, घनी घनी इमरजेंसीज, जो क्या कहते हैं उसको, वो सुलझाना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल लग रहा था कि मरेंगे लक्ष्मण जी निश्चित रूप से। प्रभु राम भी बेहोश हो गए थे बीच में, हनुमान जी ने ही बचाया सबको। हाँ, तो ऐसे हमारी ऐसी प्रार्थना है उनको, इसलिए हमको सेकंड फ्लोर पर उनको रखा है, क्योंकि जहां पर बहुत एक अति दक्षता, मतलब क्या कहते हैं, तीव्रता का काम होता है ना, बहुत सीरियस काम होता है, गंभीर काम होता है, इमरजेंसी में होता है, भाग दौड़ी होती है, टेंशन होता है, झगड़ा होता है, क्या क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है, उस जगह पर खड़े हैं वो शांति बनाए रखने के लिए, सबको विश्वास दिलाने के लिए, डोंट वरी, विश्वास रखो, अपनी सेवा करते रहो, प्रभु आपके साथ में है। तो कभी भी गदा उनके नीचे नहीं होती है, ऐसी होती है, कभी भी दे देंगे धन करके। हाँ, लेकिन यहां पर नीचे है, क्योंकि जानते हैं आप सब लोग भक्त लोग हो, प्रभु के दास हो, सेवा कर रहे हो, इसलिए मेरी गदा नीचे है। गदा उठाने में कमी नहीं करेंगे वो जरूर पड़े तो, लेकिन नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं, हमारे पर कृपा है उनकी बहुत, और कितने शुरू से कृपा करते आए, इतने सालों से खड़े हैं हमारे पास, आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका धन्यवाद कर रही उतना कम है। इसलिए नीचे प्रणाम करते हैं, करना ड्यूटी शुरू होने के पहले जगन्नाथ जी को, उनके मालिक को, और उनको भी प्रणाम करना, कभी यहाँ पहुंचे ना वहां पर प्रणाम करके आगे जाना, क्योंकि भगवान से भी अधिक ज्यादा कृपा महत्वपूर्ण होती है उसके दास की। भगवान भी अपने से अधिक दास को शक्ति देते हैं कृपा करने की, और जब दास कृपा करता है ना, भगवान को मजबूरन कृपा करनी ही पड़ती है। अरे दास ने की मेरी कृपा तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। जिस पर कृपा का बोलता ना पेटेंट दिया मैंने, उसने कृपा किया तो मुझे क्या है, मुझे देना ही पड़ेगा उसको। भगवान भी क्या कहते हैं उसको, आदि हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं उसकी तरह कृपा करने के लिए, जब दास कृपा करता है। तो हम अतिशय भाग्यशाली है, हनुमान जयंती का उत्सव इतने धूमधाम से कोई अस्पताल बनाता होगा ऐसी शंका है मुझे, लेकिन हम जानते हैं कि अस्पताल में सबसे बड़े डॉक्टर हमारे हनुमान जी हैं, वो भी ईआर के डॉक्टर हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर। और आश्चर्य की बात यह है कि वही हनुमान जी सत्य त्रेता युग में हनुमान जी बनकर आए, फिर वहां तक रहे द्वापर तक, उधर भी हनुमान जी ने अपने रूप में बहुत सेवा किया। कलयुग में वो हनुमान जी कैसे आए, मुरारी गुप्ता डॉक्टर बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु जो बनकर आए ना, भक्त बनकर भगवान आए, कलयुग में भगवान भक्त बनकर आए और प्रेम जिला दिखाया उन्होंने, उसमें वो हनुमान जी मुरारी गुप्ता डॉक्टर बनकर आए। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मुरारी गुप्ता को कोई साधारण डॉक्टर समझेगा ना वो मूर्ख व्यक्ति होगा। मुरारी गुप्ता साधारण डॉक्टर नहीं है, दिव्य डॉक्टर है, वो मरीज का बीमारी ठीक करता ही है कुशलता से, लेकिन साथ साथ प्रभु का प्रेम भी देता है उसको दवा के साथ, इसलिए मुरारी गुप्ता दिव्य डॉक्टर है। और कैसे भगवान ने उनका गौरव किया मुरारी गुप्ता का, वो कहते हैं उसी समय उन्होंने कहा कि ये दिव्य डॉक्टर क्यों है, क्योंकि मुरारी श्री कृष्ण जो है ना वो इनके हृदय में गुप्त रूप में निवास कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम मुरारी गुप्ता है। इनके हृदय के अंदर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, इसलिए इनके हाथ से केवल दवा नहीं भगवान की कृपा भी पहुंचती है उस मरीज के पास। आता है मरीज मर्ज लेकर, जाता है कृष्ण प्रेम को लेकर, ऐसा गौरव किया उनके। वे कितना कहे, समय तो बहुत कम है हमारे पास। हनुमान जी का चरित्र इतना दिव्य है और इतना गौरवशाली है, लेकिन सारांश में अगर हम समझेंगे कि सेवा, तत्परता, नम्रता, ये तीन गुण इनके व्यक्तिमत्व के प्रधान गुण है जो हमारे अस्पताल में यशस्वी रूप से काम करने के लिए बहुत आवश्यक है, इतना भी समझ में आया ना तो उनका जयंती सफल हो गया। नहीं तो उनको लगेगा अरे इतना जन्म जयंती मनाया, इतने लड्डू खिलाए, मुझे इतने द्राक्ष का हार पहनाया, मुझे इतना ड्राई फ्रूट का हार पहनाया, क्या फायदा है। जब मरीज को जरूरत है तत्परता की तो आप लोग धीरे चल रहे हो, जब मरीज की सेवा में सेंसिटिविटी की आवश्यकता है तो आप एकदम क्या कहते हैं उसको कठोर बनकर काम कर रहे हो, नहीं चाहिए द्राक्ष मुझे तुम्हारे, ऐसे बोलेंगे वो। आपके द्राक्ष का हार, फलों का हार, लड्डुओं का महाप्रसाद भोग जो आप दे रहे हो प्रेम से स्वीकारेंगे, तब स्वीकारेंगे खुशी से, जब उन्होंने जो आदर्श स्थापन किया था उसको आप पालन करोगे ना तब बड़े प्रेम से आपके लड्डू खाएंगे वो, बोले और दो मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं और लड्डू खिलाओ मुझे। ये जो भगवान के भक्त होते ना ये खुद के गौरव के लिए, खुद के आनंद मनाने के लिए कभी नहीं आते प्रभु, ये तो भगवान की सेवा के लिए आते हैं। प्रभु की सेवा हो रही है वही उनका पंच पकवान का भोग है उनके लिए, और बाकी प्रेम से आप देते हो उनको पकौड़ा वगैरह तो खा लेते वो, लेकिन वो उनका सही उनके लिए भोग यह है प्रभु की सेवा, और प्रभु की सेवा जो करते हैं ना उनके भी ये आधीन हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, इनको हमारे भोग की कोई आवश्यकता नहीं। वो सीता मैया खिलाती उनको बड़े प्रेम से। है क्या हमारे पास समय है कि समाप्त हो गया समय। चलो एक कहानी बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं उतना समय में कहानी हो जाएगी हमारी। तो ये जगन्नाथपुरी में बहुत लीला है, अभी जगन्नाथ जी महाराज खड़े हैं यहां पर, कैसे नहीं बताया उनके सामने क्या लीला हुई। जगन्नाथपुरी में समुद्र जो होता ना वरुण देव, वो बहुत भयंकर बाढ़ लाते थे हमेशा, इतनी लहरें लाते थे ना कि जगन्नाथपुरी को ऐसा पूरा बाढ़ से भर देते थे। तो सब जगन्नाथ जी के पास गए, महाराज भगवान बचाओ, क्या हो रहा है, समुद्र हमारे पर आक्रमण कर रहा है, हमेशा हमारा जीवन का संतुलन बिगाड़ दे रहा है, कुछ करो। तो जगन्नाथ जी ने हनुमान को बुलाया और कहा हनुमान मैं जानता हूं कि समुद्र आपसे डरता है, आप समुद्र किनारे खड़े रहो और केवल अपनी नजर से उसको रोकते रहो। तो हनुमान जी को बुलाया वो खड़ा कर दिया समुद्र किनारे जगन्नाथपुरी के। हाँ अभी खड़े हो गए, अभी हनुमान जी खड़े हैं इतना ही काफी है समुद्र के लिए, कैसे आगे आने की हिम्मत करेगा वो? ऐसा नहीं कि वो आगे आएगा युद्ध करेगा फिर हनुमान जी परास्त करेंगे फिर पीछे जाएगा फिर एक दो दिन शांत हो जाएगा फिर आगे वापस नया बल लेके प्राप्त करके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हनुमान जी खड़े हैं खाली, बस बोलते हैं ना बॉस का खड़ा होना ही आवश्यक है, बस खड़ा है ना बस, आप तुम्हें हाथ ना बस तुम्हें रहा होता बस। तो अभी देखो ना अभी खड़े हैं तो अभी कुछ सेवा नहीं ना, अभी क्या है एक्चुअली खड़े रहना ही सेवा है, लेकिन जिसको सेवा करने की आदत है उसको खड़ा रहना का कैसा अच्छा लगेगा, लेकिन खड़े होके बोर हो गए। ऊपर से क्या है जगन्नाथपुरी में खिचड़ी प्रसाद, सुबह शाम खिचड़ी, बोले ठीक है ऐसे प्रभु की सेवा में है तो खिचड़ी भी ठीक है। लेकिन बहुत महीने गुजर गए, समुद्र ने हिम्मत नहीं की आगे आने की, तो इनको सीता देवी के हाथ के पंच पकवान की मधुर मधुर व्यंजनों की याद आने लगी। बोले कहते हैं एक दिन नाइट में ड्यूटी समाप्त होने के बाद मतलब अंधेरा होने के बाद मैं एक बार रात को जाके आता हूँ, नाइट ऑफ बोलते ना आप लोग, नाइट ऑफ लेके आता हूँ, पास ले लिया, पास लिया नहीं बहुत तो गड़बड़ किया, पास लिया नहीं एक छलांग लगाया, अयोध्या पहुँच गए और सीता मैया ने बोला अरे बेटा बहुत दिन के बाद आए हो क्या चाहते हो? बोलो मैया बहुत भूख लग रही है खाना खिलाओ। मैया ने अपने हाथ से प्रेम से खाना खिलाया, बहुत लड्डू खिलाया, बहुत आनंद आया बहुत बहुत दिनों बाद। और यहाँ पर जिस क्षण छलांग लगाई ना उसी क्षण समुद्र ने आक्रमण किया, पूरा जगन्नाथपुरी को भरा बाढ़ से भर दिया, पूरा हाहाकार मच गया, रात को त्राही त्राही मच गया, प्रभु प्रभु पुकार के भाग गए जगन्नाथ जी की ओर और पूछ रहे हनुमान जी किधर है? बोला नहीं है उधर, ये सूर्योदय के समय आ गए छलांग लगा के, जैसे छलांग लगाया समुद्र पीछे। तो जगन्नाथ जी ने पूछा ये क्या नाटक है, आपको खड़ा किया था आप किधर गए? तो क्या करे प्रभु आपके धाम में खिचड़ी मिलती है हमेशा, वो सीता मैया के दरबार में क्या क्या खाते थे हम याद आई तो गया खाने के लिए। तो प्रभु ने कहा डोंट वरी, इसके आगे मेरे 56 भोग का महाप्रसाद तुम्हें दिया जाएगा। और बोले प्रेम से बोले सबको इसको ना अभी बांध के रखो। तो उसके पैर पे बेड़ी लगा दिया बेड़ी, और आज भी वो खड़े हैं समुद्र किनारे पे। नाम क्या है उनका पड़ा? बेड़ी हनुमान। थोड़ा धोती ऊपर करेंगे ना तो बड़ी साखड़ लगाई हुई है और खड़े हैं ऐसे, और कभी बाढ़ नहीं है उसके बाद। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको पहुंचता है, जगन्नाथ जी का बहुत सेवा किया उन्होंने। एक बार जगन्नाथ ने कहा मेरा मंदिर और जो महल है ना वो समुद्र किनारे पे है, बहुत लहरों की आवाज आती है, मुझे ना लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में बैठने से डिस्टर्ब होता है, जब मैं मेरी पत्नी से मिलता हूँ मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अभी मुझे हंसी आ रही है सॉरी माफी चाहता हूँ। लेकिन हनुमान जी को आदेश दिया कुछ करो आप, तो हनुमान जी ना वहाँ से समुद्र की दिशा में गए और जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर समाप्त होता है ना वो गेट पे जाकर अपना ऐसा कान देके खड़े रहे, और सॉरी ध्वनि लहरें उस कान में एकत्र की उन्होंने। वो होता ना भिंग, होता ना भिंग मालूम है आपको, लेंस लेंस वो कैसा होता है ऐसा पकड़ेगे ना तो कितनी किरणें यहाँ से आ रही है वो ऐसा उसको एक बिंदु पे ला के रखता है, वो भिंग की क्षमता होती है। ये सारे ध्वनि लहरें समुद्र के पास आने वाली शोर वाली सब कान में इकट्ठा कर दी, उससे उनका कान का पर्दा फट गया। क्या नाम पड़ा? कान फाटा हनुमान। अभी भी खड़े उधर ऐसे ही खड़े हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ जी के उस द्वार से एक भी लहर की आवाज नहीं आती है, उससे दरवाजे बाहर निकलेगा ना बहुत लहरों की आवाज आएगी, लेकिन अंदर प्रवेश किया ना शांति। आप जगन्नाथ जी के मंदिर में कहीं भी जाएंगे ना एक भी लहर की आवाज नहीं आएगी। वैसे तो वो किनारे पे है समुद्र के, और जगन्नाथपुरी का किनारा है ना 10-10 फीट की लहरें आती है वहां पर, बड़े बड़े 100-100 किलो के आदमी को उठा के फेंकती है लहर, इतनी आवाज आती है, लेकिन मंदिर के अंदर एक भी आवाज नहीं आती। एक बार हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने बुलाया आ जाओ मुझे मिलना है आपसे, तो हनुमान जी तत्परता से आए, तो चक्र ने उसको रोकना शुरू कर दिया, अरे कहाँ जा रहे हो नहीं आना अंदर, तो पांव में पांव डाल रहे हैं, इन्हें पुकारा भगवान आप पुकार रहे हो आपका सेवक रोक रहा है मुझे। तो जगन्नाथ जी ने उनके कंधे पर 4 चक्र पैदा किए, उसको देखकर ये चक्र निस्तेज हो गए, हाँ रास्ते से हट गए। इमेजिन मतलब भगवान ने बताया हनुमान जी कौन है, चक्र को समझाया बेटा ये जो आ रहे हैं ना ये 4 चक्र हनुमान है, उसका नाम पड़ा 4 चक्र हनुमान। आज भी जाओगे आप पूरी में यात्रा में तो पुजारी को बोलना उस गेट के सामने यहाँ पर कानफाटा हनुमान है, यहाँ पर 4 चक्र हनुमान है, उनको बोला वस्त्र निकालो, वो निकालेंगे तो चार चक्र कंधे पर खड़े ऐसे तेज वाले। भगवान ने सर्टिफिकेट दिया उनको कि हनुमान जी क्या चीज है, ऐसे क्या लीला है उनकी, उनका स्मरण मात्र से भी सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उनका कीर्तन मात्र से ही, कथन मात्र से ही सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं, आनंद होता है आनंद। हाँ, सीता मैया सिंदूर लगा रही थी एक बार, तो ये पूछते हैं ये क्या कर रही है भैया, अभी वो क्या समझाएगी उसको, बोले ये सौभाग्य का प्रतीक है। बोले सौभाग्य क्या होता है, बोले कोई बात नहीं, डोंट गो इन सो मच डिटेल्स, इतने गहरे ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु को बड़ा खुशी होता है जब मैं लगाती हूँ उसको। क्या बताया, प्रभु को बड़ी खुशी होती है जब मैं इसको मांग में लगाती हूँ। अच्छा, इतना सा लगाने पे इतनी खुशी होती है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे प्रभु के रास्ते पर बैठ गए, पूरा बदन पे सिंदूर लगाया कंप्लीट। बोला अगर इतना लगाने से इतनी खुशी होती है तो मैं पूरा होलसेल में खुशी दूंगा भगवान को। परवाह नहीं किया, लोग हंसेंगे, आपने अबे हंसे ना आप लोग, सब लोग हंसे कि नहीं हंसे, उनको पता है आप हंसेंगे, वो कहाँ परवाह करते कि आप हंसते कि नहीं हंसते, उनको तो प्रभु को प्रसन्न करना है बस, दुनिया हंसे या रोए अपने क्या करना है, क्योंकि जो हंसते हैं बाद में रोते हैं उनको मालूम है, लेकिन उनको उनको उसकी परवाह नहीं होती है। किसी अयोध्यावासी की परवाह नहीं की उन्होंने, सब लोग हंस रहे रास्ते में बैठे हुए, प्रभु आए, प्रभु को इतना अच्छा लगा, प्रभु नहीं हंसे, प्रभु को पता है कि मेरे भक्त का भाव क्या। बोला क्या हुआ प्रभु, हनुमान जी ऐसे क्यों बैठे हो आज? बोले सीता मैया को इतना लगाने पर इतनी खुशी होती है, इसलिए मैंने सोचा आपको पूरा ही खुशी दे दूं। आज भी उस सेवा भाव, प्रभु को प्रसन्न करने का जो भाव है ना, वो भाव क्या भाव है, प्रभु को प्रसन्न किया जाए किसी भी कीमत पर, वो भाव को याद करते ही लोग भी सिंदूर लगाते हैं और वो सिंदूर अपने सर पे भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सिंदूर अपने सर पे? ऐसा नहीं कि भाई अच्छा हो जाए, भाई अच्छा हो जाए, ये नहीं, ये कि प्रभु को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर भी आ जाए, इसलिए वो सिंदूर हमको लगाते हैं अपने आप को। आप भी आगे जाकर इसीलिए लगाना, अच्छा दिखता है इसलिए मत लगाना, ये प्रभु को प्रसन्न करने का तीव्र भाव है, वो मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसे हमारे हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महामहोत्सव की, श्री प्रभु रामचंद्र भगवान की, मिथाई गौर प्रेमानंदे।